ओम शांति। ओम शांति। आप सभी प्यारे बाबा के घर मधुबन तपस्या भूमि वरदान भूमि प्यारे ब्रह्मा बाप के की साकार भूमि उनके चरित्रों की यादगार भूमि पर तपस्या कर रहे हैं, तो ये भी चांस मिलना और उस चांस को लेना आप सबका परम सौभाग्य है। ऐसा अनुभव कर रहे हैं ना आप सब? बोलिए आंची। हाँ, हाथ हिलाओ हाथ हिलाओ। वेरी गुड वेरी गुड। आप सबका चेहरा भी बता रहा है। जब बाबा की याद में रहते हैं और बाबा से जो सुख मिलता है, जो शक्ति मिलती है, तो आत्मा का अपना स्वरूप भी बाह्य रूप से भी वैसा ही बन जाता है। और ऐसा आप सब महसूस भी कर रहे हैं। और आज विशेष उमंग और उत्साह हमेशा हमारा रहे, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और आपने गीत भी कितना सुंदर प्यारा सुना। उमंग और उत्साह को क्या कहा गया? पंख। पंख की क्या विशेषता होती है? हाँ, पंख नाम सुनते ही लगता है कुछ उड़ना है, कोई उड़ने वाली बात है। तो आप सब उड़ रहे हो ना? हाँ, ऑलरेडी उड़ रहे हो, अब उड़ने की क्या बात सुनाए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप तो उड़ ही रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि यहां आपको अभी इतना अच्छा संग मिला, वायुमंडल मिला, चारों ओर कितने पावरफुल वाइब्रेशंस हैं, कितनी अच्छी दिनचर्या है, कितना अच्छा ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, कितने महारथी आप सबको ज्ञान रत्नों से भरपूर कर रहे हैं, रोज बाबा की मुरली यहाँ साकार उसमें सुन रहे हैं। हाँ, साकार धरनी पर जो ब्रह्मा बाप की भी याद कराने वाली है, मम्मा की भी याद कराने वाली है, तो जरूर उड़ेंगे ना। परंतु ऐसा अनुभव यहाँ करके जाओ, ऐसी अपने अंदर इस उड़ने की छाप लगा के जाओ, जो आप अपने स्थानों पर भी उड़ते रहो, और सिर्फ एक दो दिन नहीं, कुछ दिन तो नशा चढ़ा रहता है ना? फिर धीरे धीरे जब कारोबार में जाते हैं, फिर घर ग्रस्त की बातें आती हैं, बिजनेस की काम धंधे की बातें आती हैं, तो उमंग उत्साह कम होने लगता है। तो मैं सबसे पहले यही बात कहूंगी कि जैसे यहां आप उड़ रहे हैं, आप सबने कहा हम उड़ रहे हैं, तो ऐसे वहां भी उड़ते रहो। पसंद है ये बात सबको? बाबा कई बार कहते हैं ना, मुरली में सुना होगा कि बच्चों को नशा चढ़ता है और जब संबंधियों का मुंह देखते हैं, बाहर जाते हैं, तो नशा उतर जाता है जैसे सोडा वाटर। सोडा वाटर की बोतल खोलो, क्या होता है उस समय? शू होता है, और दो मिनट पड़ी रहे तो पानी हो जाता है, उसका जो वो है वो खत्म हो जाता है ना। हाँ, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। बाबा इसलिए सोडा वाटर का मिसाल देता है। तो उमंग उत्साह भी हमारा सोडा वाटर नहीं बनना चाहिए। ऐसे नहीं जब ट्रेन में बैठे और घर पहुंचे तो धीरे धीरे उमंग कम हो जाए, हाँ बॉटल से वो निकल जाए अभी तो पैक है ना एकदम। तो ऐसा लक्ष्य रख करके इस 3-4 दिन को अच्छी तरह से अपने अंदर भरपूर करो और वो अनुभव ऐसा करो जो आपकी अमिट छाप बन जाए। जैसे देखो कोई चीज बहुत अच्छी लगती है वो कभी भूलती नहीं, भूलती है नहीं, यहां तक कि कभी कोई मिठाई भी अच्छी लगी हो, टोली भी अच्छी लगी हो तो भी याद रहते, कहते वो बहुत अच्छी थी। ब्रह्मा भोजन भी अच्छा मिले तो याद रहता है ना, वो तो फिर भी स्थूल है, लेकिन ये तो सूक्ष्म अनुभव है, आत्मा के अंदर समा रहा है तो वो समाया रहे, ये है उमंग उत्साह की निशानी। क्योंकि उमंग उत्साह को पंख कहा गया ना, तो उमंग उत्साह की पहली निशानी यही है कि कभी भी हमारे अंदर किसी भी प्रकार से वो कम नहीं होना चाहिए, समझा। तो इसीलिए उमंग और उत्साह को पंख कहा गया, क्योंकि जब जीवन में उमंग रहता है तो मनुष्य आत्मा सहज ही पंखों के समान, पंख है तो उड़ने का निशानी है, तो अंदर से बहुत हल्कापन रहता है। भले शरीर धरती पर है पर आपका मन और बुद्धि उड़ता रहेगा, माना कहीं भी फंसेगा नहीं, कहीं भी। एक पंछी कोई उड़ने वाला हो, कोई भी पंछी, और उसके अगर आप पंजे बांध दो रस्सी से टहनी के साथ, तो वो कितना फड़फड़ाता है ना, क्योंकि उसको तो उड़ना है, उसको तो पंख मिले हुए हैं। तो प्यारे बाबा ने भी संगम युग पर हम बच्चों को ये वरदान दिया है, संगम युग को ही वरदान है, क्या उमंग उत्साह का और खुशी का। जैसे कलयुग की दुनिया है ना, उसको श्राप है कि दुख मिलना ही है। आप किसी से भी पूछो, कितना भी कोई व्यक्ति धनवान हो, बहुत ऐश्वर्य का जीवन जीने वाला हो, बहुत बड़ी पदवी पे भी हो, सब सुख सामग्री उसके पास हो, तो भी अगर आप उसका अनुभव सुनेंगे, बात करेंगे, तो जरूर उसके जीवन में दुख का एहसास होता ही है, है ना ऐसा। तो कलयुग माना ही कि दुख का श्राप है, जहां सुख भी लिया तो वहां थोड़ा दुख भी जरूर आ जाता है। कोई भी साधन देखो, हमें सुख दे रहा होता है, जब बिगड़ जाता है तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है, हो जाती है ना। कोई भी बात में आप देखो, संबंधों में भी देखो, तो सभी का यही, हाँ कलयुगी दुनिया तो आप जानते ही हो, सुनाने की जरूरत ही नहीं है। तो जैसे कलयुग को दुख का श्राप लगा हुआ है, क्योंकि है ही रावण का राज्य, सभी तरफ कोई ना कोई विकार है, और उन विकारों के प्रभाव से आत्माएं दुख की फीलिंग में, निराशा की फीलिंग में, कभी ना कभी किस किस बात की फीलिंग में, क्या क्या होता रहता है। पर हम संगम युगवासी हैं, कलयुग से हम निकल आए हैं। अगर हमें कोई कहे आप कलयुगी मानव हो, आपको कैसा लगता है, सुनना मंजूर ही नहीं होगा या मंजूर होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम कलयुग से निकल आए, संगम युग पर आ गए, भगवान के बच्चे बन गए, और भगवान ने संगम युग को वरदान दिया है माना सारा ही युग, चाहे छोटा सा युग है, कोई थोड़े टाइम के लिए, बाबा नहीं कहता उमंग उत्साह में रहो, पूरा ही जन्म जिस घड़ी से हम बाबा के बनते हैं, उस घड़ी से, उस सेकंड से ही प्यारे बाबा से हमको वरदान मिलना शुरू हो जाते हैं। और सबसे पहले यही वरदान मिलता है उमंग उत्साह और खुशी का। नए नए भाई बहने भी जो थोड़े ही दिन हुए होते हैं, वो अपना यही अनुभव सुनाते हैं, कहते दो दिन में ही मेरे को इतनी खुशी आ गई, और सचमुच उनका चेहरा भी बदल जाता है। आप कभी भी देखो कोई व्यक्ति उदास बैठा हो, निराश बैठा हो, उसका फोटो खींचो, और कोई व्यक्ति खुश दिखाई दे रहा हो उसका फोटो खींचो, फर्क लगेगा या नहीं? बोलो, बहुत फर्क लगेगा। उसी ही व्यक्ति का अगर आप, चलो दूसरे का छोड़ो, उसी व्यक्ति का अगर आप किसी दिन देखो आज खुशी कम है, हाँ चाहे वो बाबा का ही बच्चा है, तो चेहरा बदल जाता है, बदल जाता है ना। हाँ, वीडियो बनाओ, वो वीडियो भी देखो खुशी वाली, और वो वीडियो भी देखो जब खुशी कम हो गई, तो चेहरा बदल गया, असर आ जाता है उसका। तो बाबा इसलिए हम बच्चों को कहते हैं, मैंने तो आपको खुशी का वरदान दिया है, और सदा उमंग और उत्साह में रहना है। इसीलिए पंख कहा है, क्योंकि उमंग और उत्साह हमें सभी बातों से ऊपर रखता है। जैसे पंख लगने से उड़ने की बात है, तो उड़ना माना ऊपर हुआ ना, धरती पर उड़ना नहीं होता, धरती पर चलना होता है। तो जब हम उमंग उत्साह में रहते हैं, तो इसका मतलब ही है कि हम किसी भी बात में फंसते नहीं हैं, उसके बंधन में नहीं आते, उसके अधीन नहीं होते। कोई भी परिस्थितियां, बातें हमारे ऊपर असर नहीं करेंगी, क्योंकि हमको तो उमंग और उत्साह के पंख लगे हुए हैं। एक पक्षी होता है, उसका नाम शत्रुमुर्ग होता है, उसको ऊंट पक्षी भी कहते हैं, सुना होगा। हाँ, हाँ, मुरली में, हाँ अभी आ। तो बाबा उसका मिसाल क्यों देते हैं मालूम है? कि वो बहुत ऐसा पक्षी होता है कि ना तो अपने को जानवर समझता है और ना अपने को पक्षी समझता है। जब उसको कहते हैं ना उड़ो, कहता है मैं कैसे उड़ूं, मैं तो धरती पर चलने वाला जानवर हूं। अच्छा, फिर अगर उसको कहते हैं ना चलो ठीक है नहीं उड़ते हो तो तुम धरती पर चलने वाले जानवर हो, तो कुछ बोझ उठाओ, कहता है मैं बोझ कैसे उठाऊं, मैं तो पक्षी हूं। दोनों तरफ हो जाता है। तो ऐसा होना ठीक है? हाँ नहीं, ऐसा होना ठीक नहीं है। इसलिए बाबा मुरली में सुनाता है, ऊंट पक्षी नहीं बनना है, शत्रुमुर्ग नहीं बनना है। हाँ, हमको तो उड़ने वाला पक्षी क्या, उड़ने वाले फरिश्ते स्वरूप है हम। पक्षी तो फिर भी चलो, हाँ एक प्रकृति की सुंदरता है, आज की दुनिया का पक्षी है, जानवर है, जो भी है, पर प्यारे बाबा हमको उड़ने वाला फरिश्ता बनाते हैं। इसलिए फरिश्तों को भी पंख लगे हुए हैं। हाँ, कोई को भी फरिश्ता बनाते हैं तो क्या दिखाते हैं, पंख दिखाते हैं। तो फरिश्ते भी उड़ते रहते हैं, और फरिश्ते पूरे विश्व का चक्कर लगाते हैं। तो ये निशानी है कि हम आत्माएं बाबा के बनने के बाद हमारे अंदर इतना उमंग होता है, इतना उत्साह होता है, इतनी खुशी होती है कि हम उसमें पूरे विश्व की सेवा कर सकते हैं। सोचो कितनी बड़ी आपको हाँ बाबा ने एक ताकत दे दी, वरदान दे दिया कि उमंग और उत्साह में रहने से अपने फरिश्ते स्वरूप में रहना सहज हो जाता है और फरिश्ते स्वरूप से पूरे विश्व में हम सेवा कर सकते हैं। दादी जानकी अपना अनुभव सुनाया करती थी, उनको फरिश्ते बहुत अच्छे लगते थे। छोटे छोटे फरिश्ते भी कोई गिफ्ट कर जाता था ना तो दादी सजा कर रखती थी, कोई आता था तो देखता था। लंदन में हम गए तो बाबा भवन जो सबसे शुरू का केंद्र था जिसमें दादी सबसे पहले पहले गई 74 में, छोटा सा स्थान था वो और उसको बाबा भवन नाम दिया था। तो दादी के कमरे में एक शोकेस रखा था बहुत सुंदर कांच का, उसमें छोटे छोटे एंजल रखे हुए थे। तो दादी खुद भी बताती थी कि मेरे को इसलिए ये अच्छे लगते हैं कि इनको देखकर हमेशा उड़ने की फीलिंग आती है। फरिश्ते कहते ना धरती पर पांव नहीं रखते, फरिश्तों को कोई बांध नहीं सकता क्योंकि वो अपने सूक्ष्म स्वरूप में रहते हैं और इसलिए वो किसी भी बात के अधीन नहीं होते। तो हम भी बाबा के बच्चे ऐसे सदा उमंग उत्साह से और खुशी से जब रहेंगे तो बहुत हल्के रहेंगे, डबल लाइट रहेंगे। एक लाइट हमारे स्वरूप की चमकता स्वरूप और दूसरी लाइट मींस हल्कापन। कोई चीज हल्की होती तो भी कहते हैं ना ये लाइट है, हाँ वेटलेस है, इसका वजन नहीं है, बहुत हल्का है। तो हमारा भी ऐसे ये डबल स्वरूप, एक प्रकाशमय और एक हल्कापन, तो वो रहने से हम बहुत बेहद की सेवा कर सकते हैं। कई बार कई भाई बहने पूछते हैं हम मनसा सेवा कैसे करें। हाँ मन तो कई बार कहीं अटक जाता है, कई बार कहीं अटक जाता है, तो उमंग उत्साह के पंखों से मनसा सेवा करना बहुत आसान है। तो अपना ये स्वरूप डबल लाइट का हमेशा याद रखो और खास शाम के समय, ऐसे तो सारे दिन में ये अभ्यास रहना चाहिए परंतु संध्या समय विशेष कहा गया है कि उस समय देवता भी विचरण करते हैं आकाश में और फरिश्ते भी निकलते हैं और सारी दुनिया का भ्रमण करते हैं। अब वो भ्रमण किस लिए करते हैं, कोई घूमने के लिए नहीं, लेकिन सृष्टि के जो मानव हैं, दुखी और अशांत हैं, अनेक बंधनों में फंसे हुए हैं, बहुत निराश हैं, उदास हैं, डिस्टर्ब हैं, कंफ्यूज हैं, अशांत हैं, हर एक यही चाहता है ना मेरे को इससे छुड़ाओ, शांति मिले। तो फरिश्ते विचरण करके अपने वाइब्रेशंस उन मानवों को देते हैं। तो मैंने जब यहां प्रवेश किया, आप सब योग कर रहे थे और प्यारे बाप दादा की अव्यक्त मुरली भी सुन रहे थे, तो बहुत अच्छा वाइब्रेशन था, बहुत अच्छा। सब आप दत्त चित्त बैठे थे, एकाग्र बैठे थे, था ना ऐसे, तो मन उसी में ही लगा हुआ था। तो जब हमारा मन एकाग्र हो जाता है तो फिर हम सहज अपने डबल स्वरूप से पूरे विश्व का चक्कर लगा सकते हैं। इसीलिए आपके ही इस समय संध्या समय योग करने की और मनसा सेवा करने की ये यादगार बनी हुई है, जो भक्ति में कहा गया है कि शाम को देवता विचरण करते हैं और फरिश्ते भी सारे विश्व का चक्कर लगाते हैं। और इस कारण से देखो मंदिरों में भी आरती गाई जाती है, घंटे बजाए जाते हैं, घरों में भी बत्ती जगा देते हैं, आरती भी गाते हैं, तो जब घंटे बजते हैं, बत्ती जगती है, तो एक अंदर मनुष्य को उमंग सा महसूस होता है, अच्छा लगता है, खुशी होती है। अब वो तो स्थूल रूप से करते हैं भक्ति मार्ग के अंदर, और वो थोड़ी देर हुआ तो फिर फिनिश, ऐसे होता है ना। लेकिन हमारा ये जो स्वरूप है प्रकाशमय, हाँ, वो जो बत्ती जगाई उन्होंने और घंटे बजाए, माना हम अपने अंदर से कितने उमंग में रहते हैं, तो हमारा ये स्वरूप परमानेंट है। ऐसे नहीं है कि थोड़ी देर का, दो मिनट का है, जब तक वो आरती गाएंगे घंटा बजाएंगे तो थोड़ा अंदर उत्साह आएगा और फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे। पर बाबा ने तो हमको ये वरदान सदा के लिए दिया है कि बच्चे सदा आपके जीवन में उमंग और उत्साह रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जीवन कमाई का जीवन है और अविनाशी कमाई का है, साधारण कमाई नहीं। हम इस समय बहुत ऊंची कमाई करते हैं और इतनी ज्यादा करते हैं, जबरदस्त करते हैं, कि आप 21 जन्म आराम से निश्चिंत सुखी जीवन जिएंगे। और इतना ही नहीं, बाबा कहते हैं आपका तो 84 जन्म का विशेष रोल हो जाता है, चाहे भक्ति मार्ग में भी होंगे तब भी आपको इतना दुख नहीं आएगा। भले धीरे धीरे नीचे आते जाएंगे, लेकिन आत्मा की क्वालिटी फिर भी सबसे अलग रहती है, क्योंकि वो वर्ल्ड ड्रामा की हीरो एक्टर बन जाती है 84 जन्म पार्ट प्ले करने वाली। तो वो कैसे बनी? इस समय किस बात से? उमंग और उत्साह रहा तो पुरुषार्थ किया। तो ये हमारा कमाई का समय है। कमाई के समय कोई सोता है? कमाई के समय आलस्य आता है, अलबेलापन आता है? नहीं आता ना। देखो, रात की भी ड्यूटी हो तो पहुंच जाते हैं। हाँ, अभी हमको एक पायलट मिला था तो उसने कहा मुझे तो रात को ही प्लेन उड़ाने होते हैं। मैंने कहा फिर सोते कब? वो कहते हैं जब भी टाइम मिल जाए, क्योंकि ड्यूटी है। कहता अमृत वेले भी मैं प्लेन उड़ा रहा होता हूँ। हाँ, बीके था तो मैं उस टाइम बाबा को ऐसे समझता हूँ, क्योंकि मैं तो आकाश में उड़ा रहा हूँ तो मैं बाबा के बिल्कुल पास में हूँ। तो देखो, उड़ने से क्या लगता है कि बाबा के भी हम समीप पहुंच गए, है ना। भले शरीर तो इस दुनिया में ही है, कोई बाबा के पास नहीं गया है, लेकिन समीपता महसूस होती है ना, क्योंकि इस धरनी से ऐसे लगता है हम ऊपर उठ गए। तो उमंग उत्साह भी ऐसे ही है। तो हमारा इस ब्राह्मण जीवन में आलस्य नहीं आना चाहिए। आलस्य भी एक छठा विकार है। जैसे हम पांच विकार कहते हैं ना, वो तो सबको मालूम है, और पांच विकारों को आपने छोड़ भी दिया, अगर थोड़ा बहुत अंश है भी, तो उसका भी पुरुषार्थ कर रहे हो ना छोड़ने का। यही हमेशा हमारा लक्ष्य रहता है ना, कि हम इतना योग लगाएं कि सभी विकारों का अंश भी समाप्त हो जाए। थोड़ा भी देखो कि कोई विकार अगर हावी होता है तो अंदर से अच्छा लगता है क्या? बोलो, नहीं लगता ना। तो हम बाबा की मुरली याद करते हैं, हाँ, और श्रीमत को सामने लाते हैं, अपने नियम मर्यादाओं को याद करते हैं, ताकि कोई भी विकार हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। तो ऐसे ये छठा विकार भी है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। देते हैं, पूरा नहीं इतना समझते, लेकिन सच बताएं आलस्य महाविकार है। क्यों? क्यों? क्योंकि जब आलस्य आता है ना, तो पुरुषार्थ ढीला हो जाता है। बोलो, ऐसे होता है ना? हाँ, तो पुरुषार्थ ढीला हुआ माना तो उमंग उत्साह कम हो गया। इसलिए उमंग उत्साह सदा रहेगा तो आलस्य नहीं आएगा। आलस्य से हमारी जो कमाई इतनी जबरदस्त हो रही है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये कमाई बड़ी सूक्ष्म है, अविनाशी है। देखो हमारे लिए एक एक सेकंड वैल्यूएबल है। दादी सुनाया करती थी, गुलजार दादी, संगम युग का एक सेकंड भी कई वर्षों के समान है, ये समझ लो। क्यों? क्योंकि इसी एक जन्म में, अभी देखो आप सबको, किसी को 2 वर्ष हुए होंगे, किसी को 10, किसी को 20, चलो 40 हुए हो, 50 हुए हो, 86 तो नहीं हुए किसी को भी, नहीं ना। तो सारे संगम युग में कितना समय मिला आपको पुरुषार्थ करने का, और अभी तो हम अंतिम समय की ओर पहुंच रहे हैं। तो इतने ही टाइम में आप 5000 वर्ष की कमाई करते हो। तो आपके लिए सोचो इस समय एक एक सेकंड वैल्यूएबल हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ। जैसे दुनिया में जो बहुत ही मल्टी मिलियन कमाई करते हैं वो सुनाते हैं, हम फोन पे ही एक एक कॉल से ही कितना कितना कुछ कमा लेते हैं, लाखों करोड़ों कमा लेते हैं। तो उनको अपने उस कमाई की, या आजकल होलसेल इंटरनेशनल लेवल की कमाई का कितना नशा चढ़ जाता है, वो तो विनाशी है। तो उनको ये रहता है हमारी एक एक कॉल कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने उससे ही अपनी कमाई सेटिंग की हुई है। तो संगम युग पर तो देखो बाबा ने हमको इतना ऊंचा वरदान दिया कि बच्चे आपका एक एक संकल्प, एक एक सेकंड भविष्य जमा करने के लिए है, कमाई का है। तो इसमें हमारा उमंग कभी कम नहीं हो, तो आलस्य जो है ना वो ढीला कर देता है, आलस्य विकार नहीं आए। फिर आलस्य आता है तो क्या होता है, आप ही बताओ क्या होता है, सबको अनुभव है। अमृत वेला ढीला हो जाएगा, फिर धीरे धीरे मुरली क्लास ढीली हो जाएगी, फिर कहेंगे अब सेंटर पे जाके क्या सुनना है, ऑनलाइन ही सुन लेंगे। आजकल तो सब तरफ से मुरली सुनने को मिलती है, साइंस के साधन इतने अच्छे हैं, हमको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है ना। फिर कहेंगे घर बैठे ही मैं तो बहन जी एक मुरली नहीं, 4-4 मुरली सुन लेता हूँ। वो तो अच्छा करते हो, लेकिन जो बाबा ने हमें नियम दिया हुआ है, बच्चे रोज सेवा केंद्र पर जाकर अपने ज्ञान और योग की क्लास करो, वो इसीलिए दिया है ताकि हमारा उमंग और उत्साह सदा बना रहे, कम नहीं हो। तो आलस्य विकार ढीला कर देता है। फिर सेवा में भी जब जाएंगे ही नहीं तो सेवा कैसे करेंगे। अच्छा कर भी लेंगे तो एक निमित्त मात्र, ठीक है मेरा फर्ज बनता है, मुझे बाबा की भंडारी भरनी है, नहीं तो जमा कैसे होगा, मेरा भाग्य कैसे बनेगा। करते हो, ऐसे नहीं है नहीं करते हो, लेकिन उसमें सदा उमंग रहे ताकि हम दिल से वो सेवा कर सके। तो जब हम कोई कार्य दिल से करते हैं तो हमारा वो उमंग दिखाई देता है। एक है हमने अपना फर्ज समझ के किया, ड्यूटी समझ के किया, या कहने से किया, चलो सेंटर की दीदी कहती है तो सेवा करनी है, कभी टाइम मिला तो कर्मणा भी कर ली, चलो थोड़ा बहुत जितना यथाशक्ति धन है वो भी लगा दिया। पर फर्क पड़ जाएगा जब कोई कार्य दिल से किया जाता है तो उसका रिटर्न भी हमको उतना ही अधिक मिलता है। बाबा भी तो देखता है ना, बच्चे मजबूरी से कर रहे हैं या दिल से कर रहे हैं। तो जो उमंग उत्साह में रहने वाली आत्मा होती है वो कोई भी सेवा दिल से करेगी, खुशी से करेगी, मजबूरी से नहीं करेगी या कहने से नहीं करेगी। हाँ, आज भी था ना मुरली में कि जो कहने से करे, हाँ, जो अपने आप करे वो देवता, और जो कहने से करे मनुष्य, और जो कहने से भी ना करे वो तो बोलना ही नहीं है। हाँ? नहीं बोलना ना, वो तो कोई है ही नहीं ऐसा। हाँ, जो कहने से भी ना करे। तो उमंग उत्साह में रहने वाली आत्मा को कहना नहीं पड़ता, ये सच है, कहना नहीं पड़ता, वो अपने आप करती है और दिल से करती है। तो ये चेक करना कि मैं बाबा की पढ़ाई, बाबा की सेवा, अपनी रुचि से, दिल से मैं आत्मा करती हूं, चाहे आप माताएं, कन्याएं, भाई, कुमार, हाँ, चाहे कितनी भी बड़ी प्रवृत्ति में रहते हो या अकेले रहते हो, लेकिन हो तो बाबा के बच्चे ना सब, हो तो बाबा के वारिस ना सब। सबको सतयुग में तो ऊंचा पद पाना है ना, बोलो, ऊंचा पद पाने वाले कौन कौन है? सारे? अरे वाह, फिर तो ताली बजाओ, कमाल है। हाँ, फिर तो सारे बिहार में ढेर सारी राजगद्दियां बनानी पड़ेंगी बाबा को। हाँ, और बिहार में क्यों, पूरे भारत में आपके लिए बनेंगी, है ना, और सारी ही दुनिया ही सारा भारत होगी। हाँ, तो बहुत ही सब कुछ होगा। तो बाबा ने तो कहा हुआ है कि अच्छा, भले विजयी माला 108 की है, तो वो माला एक है, तो दूसरी, तीसरी, चौथी कई मालाएं बन सकती है। तो हमें तो बड़ी खुशी हो रही है कि आप सब ने हाथ खड़ा किया कि हम ऊंच पद पाने वाली आत्माएं हैं। तो जो ऊंच पद पाने वाले होते हैं वो पुरुषार्थ में लगे रहते हैं, अपना पुरुषार्थ ढीला नहीं होने देते, कभी भी आलस्य, अलबेलापन नहीं आने देते। ब्रह्मा बाबा ने शुरू से देखो हर बात को बड़ी जल्दी जीवन में लाया। सुनिए ना बाबा की चरित्र की बातें, हाँ, इतिहास की बातें। बाबा की ये विशेषता थी शुरू से, तुरंत दान महापुण्य, माना जो काम करना है तुरंत करना है, देर नहीं लगानी है। तो ये जो उमंग में रहता है ना, उसको ही रहता है अब कर डालो, सोचो नहीं, सोच सोच के कितना समय गंवा देते हैं, कितने संकल्प चल पड़ते हैं, कितने सेकंड गए, हाँ, कितने श्वास गए। कई भाई बहन अपना अनुभव सुनाते हैं, मैंने सोचा था बहन जी अब मैं अपना ये परिवर्तन जरूर करूंगा, फलानी बात ठीक करूंगा, अब मैं ये सेवा भी करूंगा, फलाना सहयोग भी करूंगा, फिर बहन जी पता नहीं वो संकल्प ढीला हो गया, अभी तक हो ही नहीं पाया। लेकिन ब्रह्मा बाबा कैसे नंबर बन गए, कैसे इतनी जल्दी संपूर्ण बन गए, क्योंकि बाबा ने हर बात को बहुत तुरंत करके दिया, देर नहीं लगाई। इसीलिए देखो जब बाबा को साक्षात्कार हुआ तो बाबा ने घर में तार डाल दी, आई तार अल्लिफ की, मैं हुआ रेल का राही, हाँ, है ना। बाबा ने देर नहीं लगाई कि मैं पूछूंगा युगल से, मानेगी के नहीं मानेगी, अपने पार्टनर से पूछूंगा क्या करेगा, हाँ, अपने संबंधियों से पूछूंगा, फलाने से राय लूंगा, कुछ नहीं। इतना बाबा को नशा रहता था, अन्य सभी बातों में भी बाबा ने देर नहीं लगाई। बच्चे आते गए, समर्पित होते गए, बाबा भवन खरीदता गया बच्चों के लिए, बाबा का ही कमाया हुआ धन समर्पित हुआ था, वही सेवा में लगा था। तो बाबा को बड़ा उमंग और उत्साह रहता था हमेशा, चाहे परीक्षाएं कितनी आई, सारा सिंधी समाज बाबा के विपरीत हो गया, लेकिन बाबा ढीले नहीं हुए। अपना पुरुषार्थ ढीला नहीं होने दिया, कभी भी बाबा का उमंग कम नहीं हुआ, उत्साह कम नहीं हुआ। बाबा को हमेशा अंदर लगन रहती थी कि शिव बाबा मुझे क्या डायरेक्शन दे रहा है और मुझे क्या करना है, मुझे दुनिया वालों की परवाह नहीं है। तो बाबा ने कलंक भी सहन कर लिए, हाँ, बेगमपुर का बादशाह रहा, कोई चिंता नहीं बाबा ने की। बाबा ने कहा ये मनुष्य आत्माएं हैं, ये क्या करेंगी, और ही उनके प्रति शुभ वृत्ति रखी, कल्याण की वृत्ति रखी, चाहे कितने भी किसी ने अगेंस्ट किया, बाबा ने हमेशा उनको फिर भी प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे कह के ही, कोई आता भी था बाबा के पास, बाबा अंदर से जानता था कि ये वही आत्मा है जिसने, हाँ, मेरे अगेंस्ट बहुत कुछ किया था, लेकिन बाबा ने उसको भी प्यार की दृष्टि दी, उसको भी गले लगाया। क्यों? क्योंकि बाबा की अंदर हमेशा कल्याणमयी वृत्ति रही, सबके लिए, सबके लिए। तो बाबा का पुरुषार्थ इसलिए बहुत तीव्र रहा, किसी भी बात को, किसी भी परिस्थिति को बाबा ने प्रॉब्लम नहीं समझा, का ड्रामा में ये दृश्य आया है और जो परिस्थिति आई है वो चली जाएगी। तो कोई बाबा उदास थोड़ा हुआ या निराश थोड़ा हुआ, कोई चिंता में नहीं गया, हाय क्या होगा, मैं कहाँ फंस गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। हाँ, तो जो ढीला पुरुषार्थी होता है ना, वो छोटी छोटी बात में अटक जाता है, ये क्यों मेरे साथ हो रहा है, मेरा ही ड्रामा में पार्ट ऐसा है, तो ये सोचना किस बात की निशानी है, हाँ, किस बात की निशानी है, उमंग कम हो गया, उत्साह कम हो गया, हाँ, ढीलापन आ गया, अलबेलापन आ गया। अलबेलापन भी बड़ा सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, पता ही नहीं चलता कई बार। इसलिए बाबा कहते हैं अपने ज्ञान और योग की पढ़ाई को बरकरार रखो, चारों ही विषयों में होशियार बनो, ज्ञान में भी, योग में भी, और तीसरा धारणा में भी, और चौथा सेवा में भी। आप तो बहुत अच्छा बोल रहे हो सब, हाँ, खूब सेवा करते हो ऐसे लगता है, हाँ या ना, ढीला क्यों बोलते हो अभी, हाँ है ना, हाँ, हाँ, और माताओं की, हाँ। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि चारों सब्जेक्ट में सदा लगे रहो, उमंग उत्साह बना रहे, तो आलस्य अलबेलापन चला जाए, एकदम चला जाए, हाँ। कोई भी बात को बंधन नहीं बनाओ, किसी भी बात के चिंता में नहीं जाओ। बाबा ने इसलिए उस सारी बातों के हल के लिए बहुत अच्छे ज्ञान के राज बताए हैं। बाबा ने कहा ना, ये ड्रामा है, आप अपना पुरुषार्थ करते जाओ, फिर जो भी होना है वो ड्रामा में फिक्स है, निश्चिंत रहो, चिंता क्यों करते हो। ऐसे कितनी सारी बातें हैं बाबा के आगे, कितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं आई, लेकिन बाबा घबराया नहीं। बाबा कई बार कहता ना, इंजन तो मैं हूं, हाँ, आप तो पीछे डब्बे हो, तो इंजन को ही देखना पड़ता है ना सब कुछ, और हमारे आगे तो डबल इंजन है, शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी। तो कोई भी बात की चिंता नहीं करो, गम में नहीं जाओ, और बाबा कहता है उसके लिए फुल स्टॉप लगा दो, बस। तो जो आत्मा ईश्वरीय नशे में रहती है वो उन बातों की परवाह नहीं करती, तो बेपरवाह बादशाह बनकर चलो, कोई भी बात की चिंता गम नहीं करने का है। और साथ साथ ये याद रहे कि मेरा अकल्याण हो ही नहीं सकता, ये ईश्वरीय महावाक्य है। बच्चे, आपका हर बात में कल्याण है, अब ये याद रहता है। मान लीजिए कोई नुकसान हो गया, उस समय आप ये सोच सकते हो मेरा इसमें कल्याण है, बताओ, हाँ हाँ, उस समय यही पक्का रहे कि इसमें भी कोई कल्याण है। भले उस समय वो ना भी दिख रहा हो कल्याण, नुकसान ही दिख रहा हो, और फिर लोग कहेंगे क्या कल्याण है, इतना नुकसान हो गया, ये कल्याण है? लेकिन क्योंकि भगवान त्रिकालदर्शी है, हमको भी उसने मास्टर त्रिकालदर्शी बनाया है, तो आने वाले समय में अपने आप आपको महसूस होगा कि उसमें जरूर कुछ कल्याण समाया था। तो आपका उत्साह सदा बना रहेगा, सदा बना रहेगा, फिर उसमें कोई ढीलापन नहीं आएगा। एक कहानी आती है, शायद आपने सुनी हुई भी हो, कि एक राजा था, उसकी उंगली कट गई। सुनिए, नहीं सुनी? अच्छा चलो कोई बात नहीं, कुछ कह रहे हैं नहीं सुनी। तो राजा जो है उसका एक मंत्री था, उस मंत्री के साथ राजा की बहुत अच्छी तालमेल थी, और राजा कहीं भी जाता था तो मंत्री को साथ लेकर जाता था, और मंत्री था भी बहुत अनुभवी और बहुत ही विशाल दिल का। तो राजा की उंगली कटी तो मंत्री ने बड़े सहज भाव से कह दिया, इसमें भी कोई भला है। राजा को गुस्सा आ गया। हाँ, कई बार कोई बात चुभ जाती है ना, चाहे वो अच्छे के लिए कहते हैं। राजा ने कहा, मेरी उंगली कट गई और तू कह रहा है इसमें भी कोई भला है, ये कैसे हो सकता है? राजा को बड़ा बुरा लगा। उसने क्या किया, उसी समय उसके राजा के अंदर अपना वो जाग गया, अंदर का ना राजापन, तो ऑर्डर कर दिया कि मंत्री को जेल में डाल दो। सब थोड़े हैरान भी हुए कि जिसके साथ इतना बड़ा पद वाला व्यक्ति, मंत्री का पद भी कोई कम थोड़ा होता है, और इतनी सी बात कही है और राजा को इतना गुस्सा आ गया है, और इस मंत्री के साथ तो राजा हमेशा हिलमिल कर रहता है, जहां भी जाता है साथ ले जाता है, और राजा ने ऑर्डर कर दिया। अब राजा का ऑर्डर तो मानना ही था, तो मंत्री को जेल में डाल दिया। अब राजा को अंदर से तो डिस्टर्बेंस थी, तैश आ गई। जब कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है ना, क्रोध आ जाता है, तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती, तो उस समय वो कुछ ना कुछ, कोई तो तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं, कोई बाहर चले जाते हैं, होता है ना ऐसे, कोई कुछ और कर लेते हैं, कोई माताएं तो रोना शुरू कर देती हैं। तो राजा ने क्या किया, अंदर से तो उबाल आया हुआ था, घोड़ा उठाया और वो शिकार खेलने जाया करता था, और मंत्री को भी साथ ले जाता था, मंत्री भी शौकीन था। अब तो उसने मंत्री को जेल में डाल दिया, तो अकेला ही घोड़ा उठाया चल पड़ा, चलता चला गया, तो रास्ता भटक गया, जंगल में जाके कहीं फंस गया। तो उस घने जंगल के अंदर डाकुओं का गिरोह था, तो वो देवी की पूजा करना चाहते थे, उसकी तैयारी चल रही थी। तो जो उस डाकुओं का सरदार था, उसने कहा आज तो देवी को बलि चढ़ानी है, बलि से खुश होगी देवी, उनका कोई आगे का प्लान था कुछ करने का, इसलिए वो देवी को बलि चढ़ाना चाहते थे। तो आप किसको बलि चढ़ाएं, यही सोच रहे थे। तो इतने में ये राजा भटका हुआ रास्ता वहां पहुंच गया, डाकू तो खुश हो गए, उन्होंने फटाफट राजा को पकड़ा। अकेला राजा क्या कर सकता था, वो इतने ढेर सारे पकड़ के और बलि चढ़ाने की तैयारी कर दी। राजा को सजाया किया और जाके देवी के आगे खड़ा कर दिया। राजा चिल्लाता रहा, किसी ने नहीं सुना। तो जब उसको तैयार कर दिया, तो उन्होंने अपने मुखिया को बुलाया, आओ। वो तलवार लेके आ गया उसकी गर्दन उतारने के लिए। तो जैसे ही वो तलवार उसने उठाई, तो उसकी नजर राजा की उंगली पर पड़ गई। तो उंगली कटी हुई थी, तो उस मुखिया को बड़ा गुस्सा आ गया। उसने कहा, ये अंग भंग व्यक्ति है, देवी तो इसको स्वीकार ही नहीं करेगी। उसने जोर से लात मार के फेंक दिया उसको, राजा को दूर, और राजा बेहोश होके जाके पड़ा। काफी देर बाद उसको होश आई, और उसको समझ आया कि मेरी तो आज बलि चढ़ रही थी, तो बेचारा चुपके से धीरे से फिर वापिस अपने राजमहल में ढूंढता ढांढता रास्ता भटकता भूखा प्यासा घर पहुंचा। राजमहल में पहुंचते किसी को शक्ल नहीं दिखाई, फटाफट अंदर गया, स्नान पानी किया, फ्रेश हुआ, राजाई वस्त्र पहने, तब तो शिकार के पहन के चला गया था। अब उसकी बुद्धि ने काम किया कि ये तो अगर मेरी उंगली कटी हुई नहीं होती तो मेरा क्या होता आज। फिर उसको आया कि इसका मतलब मंत्री ने ठीक ही कहा था, इसमें कुछ भला है, और मैंने तो खामखा मंत्री को जेल में डाल दिया। तो गया राज सिंहासन पे बैठा और दरबान को कहा मंत्री को जेल से वापस ले आओ। तो मंत्री तो जेल से वापस आ गया, वो जैसे पहले गया था उसका चेहरा खिला हुआ शांत भाव से मुस्कुराता हुआ वो जेल से वापस आ गया। तो राजा को बड़ा आश्चर्य लगा कि मैंने इसे जेल डाल दिया और ये तब भी शांत मुस्कुराता हुआ मेरे सामने आया है। तो राजा ने मंत्री को प्रश्न किया कि मंत्री आपने ठीक ही कहा था, क्योंकि मेरी उंगली कट गई थी और आपने कहा इसमें भी कोई भला है, और सचमुच अगर मेरी उंगली कटी हुई नहीं होती तो आज तो मेरा तलवार से गला काट दिया होता। तो राजा ने कहा मेरे साथ तो अच्छा हुआ पर तुम्हारे साथ तो अच्छा नहीं हुआ, तुमको तो मैंने जेल में डाल दिया और तुम्हारा इतना अपमान हुआ। तो मंत्री बोला नहीं राजन, इसमें भी भलाई है। अब तो राजा का दिमाग और हिल गया, अब इसमें क्या भला है भाई। तो राजा उनको पूछने लगे भाई अब इसमें क्या भला है। तो मंत्री बोले राजन देखो, अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते तो आप मुझे अपने साथ ले जाते, और मैं आपके साथ जाता तो वो आपको हटा के मेरी बलि चढ़ा देते। तो भलाई हुआ ना, जेल में जाना भी क्या हुआ, भलाई हुआ ना। अब उस समय तो वो भला नहीं दिखता है, दिखता है मेरा इतना अपमान इतना कष्ट, मैंने कहा ही क्या था, जरा सी तो बात कही थी, व्यक्ति कितना परेशान हो जाए और कितना उल्टा सुल्टा मुख से बोल सकता है, ऐसे करते हैं कोई और कितना राजा के लिए ही क्या क्या बोल दे। तो बाबा इसलिए हमको त्रिकालदर्शी बनाता है और उससे हमारा उमंग सदा बना रहता है, क्योंकि हम सिर्फ वर्तमान को नहीं अपने भविष्य को भी जानते हैं और अपने पास्ट को भी जानते हैं कि चलो कोई पेपर आया है, कोई होगा कर्मों का खाता, वो फिनिश करना है, तो सोचना क्या, परेशान क्या होना। अच्छा कोई हमारा हक मिलने वाला है, नहीं मिला जरूर हमें बाद में मिलना होगा, अब नहीं तो सत्युग में तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई किसी का रख नहीं सकता, देने वाला शिव बाबा है। तो इस प्रकार से हमारे जब पॉजिटिव विचार रहते हैं तो उमंग और उत्साह सदा बना रहता है। तो हम ब्राह्मण बच्चों का कभी भी कम नहीं होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना है, कोई भी कष्ट आए उदास नहीं होना है। बाबा कहते ना उदास कौन होता है, जो माया का दास होता है। तो आप तो माया जीत आत्माएं हो, माया के दास थोड़ा हो, माया आपकी दासी है ना, और उसकी भी आपको जरूरत नहीं है। है जरूरत, दूर ही रहे तो अच्छा है ना। आप तो उस पर जीत पाने वाली आत्माएं हो, माया पर भी प्रकृति पर भी विकर्मों पर भी, तो ऐसी हम तो शक्तिशाली आत्माएं हैं। सदा उमंग उत्साह के पंख हमें लगे ही हुए हैं, हम किसी भी प्रकार के बंधन में बंधने वाली आत्माएं नहीं है। अपने सदा अंदर से जो मूल गुण है उसमें विचरण करो, उसका मंथन करो, उसका एहसास करो कि मैं कौन सी आत्मा हूं। ये याद रखो। होता क्या है, कभी कभी अपने को साधारण समझ लेते हो, सच बताएं, और आप हो नहीं साधारण आत्माएं, आपको तो भगवान ने चुना है, अपना बनाया है, इतनी करोड़ों की दुनिया पड़ी है, उनको तो नहीं चुना, किनको चुना? हाँ बोलो, आप सबको। हाँ मुझे चुना, यही नशा रहना चाहिए। तो फिर मैं कौन सी आत्मा हुई? विशेष आत्मा हुई ना, साधारण आत्मा तो नहीं हुई ना। तो मेरे को तो ये सदा खुशी रहनी चाहिए, नशा रहना चाहिए। तो फिर आपको कभी कोई बात अपनी तरफ खींचेगी नहीं, बंधन नहीं लगेगी। एक बार एक राजा के पास एक तोता था। अब राजा के पास जो तोता होगा वो कितना भाग्यशाली होगा, है ना। लेकिन उस तोते को राजा ने पिंजड़े में रखा हुआ था, पिंजड़ा भी सोने का था, और राजा खुद उसको गोल्डन एप्पल खिलाता था रोज अपने हाथों से, और उसकी सेवा के लिए एक सेवादार भी रखा हुआ था जो उसका पूरा ध्यान रखता था। लेकिन उस तोते को फिर भी अंदर से लगता था मैं हूं तो पिंजड़े में ना। तो उसने बड़ी समझ से राजा को कहा, राजन मुझे कुछ दिन ना अपने मित्रों से मिलने जाना है। उनके भी तो मित्र होते हैं ना तोतों के, हा? एक साथ उड़ते हैं, कई जगह एक साथ बैठ जाते हैं, हाँ एक साथ फिर चुगते हैं। तो राजा मजबूर हो गया बेचारा उसको छुट्टी देने के लिए। राजा का उस तोते से बड़ा लगाव भी था, राजा चाहता नहीं था मैं उसको छुट्टी दूं, लेकिन जिससे प्यार होता है उसका कहना मानना भी पड़ता है। तो राजा ने उसके सेवादार को कहा, कोई बात नहीं थोड़े दिन ये हो आए। तो उसने सेवादार ने पंछी वो उसका पिंजड़े का दरवाजा खोल दिया और वो तोता उड़ चला। अब उड़ के चला गया। राजा ने सोचा आ जाएगा जितने दिन कहा है। अब एक हफ्ता बीत गया, दो हफ्ते बीत गए, वो आया नहीं। महीना बीत गया, नहीं आया। और महीना बीत गया, नहीं आया। तो राजा को पहले तो बड़ी चिंता हुई, फिर राजा ने अपने मन को समझाया। अब राजा को समझ ना आए कि कारण क्या है वो आया नहीं, तो कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर जब काफी समय हो गया, कुछ वर्ष बीत गए, तो राजा शिकार खेलने गया हुआ था। तो शिकार खेलते खेलते राजा आगे की ओर बढ़ता गया, तो देखा कि एक पेड़ की टहनी पर एक तोता झूल रहा है, अपने उससे पंजों से उसने डाल को पकड़ा हुआ है और उल्टा ऐसे झूल रहा है, और बड़े मौज में, जैसे बड़े खुश लग रहा है। क्योंकि आपको पता होगा तोते का ये ओरिजिनल नेचर होता है डाल पकड़ के झूलने का, तो आजाद जैसे, हाँ स्वच्छंद फीलिंग में। तो राजा नजदीक गया तो राजा ने देखा ये तो वही तोता है जो मेरे पास था, और मेरे पास तो सोने का पिंजड़ा, इतनी अच्छी इसकी पालना होती थी, इतना सब कुछ था, लेकिन तोता यहां ज्यादा खुश लग रहा है, क्योंकि तोते को उसमें आनंद आ रहा था जो आनंद उसको पिंजड़े में नहीं आता था, गोल्डन एप्पल खाके भी नहीं आता था, हाँ माना इतना कुछ मिलने के बाद भी नहीं आता था, क्योंकि वहां वो बंधन में था, पिंजड़े में था। तो राजा का तो प्यार था उस तोते से, राजा ने उसको देखा, तोते ने भी राजा को देखा, समझ गया। लेकिन तोता देखते हुए भी जैसे देख नहीं रहा था और अपनी मस्ती में आनंद ले रहा था उस डाल को पकड़ के झूलने का। तो राजा को भी तरस आ गया, उसने भी देखा अगर इसको इसमें सुख मिल रहा है तो इसको ऐसे ही रहने दो। तो राजा ने उसको पकड़ा नहीं, चाहता तो तीर भी मार सकता था, पकड़ भी सकता था, वो ऐसे वो उड़ भी जाता क्योंकि अभी वो स्वच्छंद था, उड़ सकता था। तो शिव बाबा ने भी हम बच्चों को हमारी जो ओरिजिनल क्वालिटीज हैं उसमें सदा आनंदित रहने को कहा है कि बच्चे आप कोई भी बात के बंधन में नहीं आओ, अर्थात उन संसारी बातों की चिंता नहीं करो, वो बंधन है। भले कितनी अच्छी अच्छे संबंध होंगे, कितनी अच्छी अच्छे साधन होंगे, हाँ कितनी अच्छी अच्छी चीजें होंगी, वो फंसा लेंगी, वो उड़ने नहीं देंगी और वो सुख भी नहीं देंगी। लगेगा बहुत सुंदर है परंतु अंतरात्मा फंस जाती है, आनंदित नहीं हो पाती, वो खुशी जीवन में नहीं रहती। पर जब हम अपने ओरिजिनल स्वरूप को याद रखते हैं, अपने स्वमान में रहते हैं, अपने स्वधर्म में रहते हैं, तो बहुत शांति, आनंद, खुशी का एहसास होता है। हाँ, बाबा ने बताया ना, हमारी आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। आज मुरली में भी था ना, जो देह अभिमानी मनुष्य है वो कहेगा शांति चाहिए और उसको ये भी नहीं पता शांति कहाँ पर है। हाँ, और हम देही अभिमानी, आत्म अभिमानी अपने स्वधर्म में है तो हम सदा शांत हैं। तो वो विचार जो हमारे ओरिजिनल है उन्हीं संकल्पों में रमण करो, मैं आत्मा हूं, ईश्वर की संतान हूं, हाँ अविनाशी हूं, मेरा स्वधर्म ही शांति है, मेरे गुण भी सुख स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, ये मेरी ओरिजिनल नेचर है। वैसे भी मनुष्य को ओरिजिनल नेचर में रहना अच्छा लगता है, आरामदायक लगता है, हाँ उसमें उसको सहजता लगती है। जैसे किसी की हंसने की नेचर होती है, उसको हंसना मुश्किल लगता ही नहीं, लगता है? नहीं लगता। और किसी दूसरे को कहते रहो हंसो तो हंसेगा ही नहीं, फिर कहो क्यों ऐसे करते हो, कहता मेरी शक्ल ही ऐसी है। लेकिन बाबा ने तो हमें कितना खुशहाल बना दिया है, हमारी ओरिजिनल नेचर ही कितनी चेंज हो गई, असलियत समझ में आ गई कि बच्चे आप वास्तव में ये हो। तो अपनी उन्हीं क्वालिटीज में, उन्हीं गुणों में रमण करो, मींस उस चिंतन में रहो और उस चिंतन को करते हुए उसका आनंद लो। जैसे कोई अच्छी बात हम सुनते हैं या कोई आपकी महिमा करता है तो बाद में आत्मा अंदर से ना गदगद होती है, अच्छा मेरे को ये कहा, हाँ अच्छा आज बाबा ने भी मुझे ये टाइटल दिया, इतना बाबा ने तो आज उड़ाया, तो अंदर कितना आत्मा को आनंद मिलता है। तो फिर सदा उमंग रहता है, कभी कम नहीं होता, हो ही नहीं सकता, कोई बातें भी कम नहीं होने देंगी। तो ये हमको ध्यान रखना है और इसमें ध्यान की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी ये नेचर है। हमने इसलिए तोते की जो बात सुनाई ना, उसको उसमें सहज लगता है। तो हमारी तो आत्मा का मूल स्वभाव ही है कि मैं प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ। तो मेरे तो गुण ही यही है, नेचुरल नेचर ही यही है, आदि में भी यही थी, अनादि भी यही है। बाबा ने हमें ये बात राज की सुना दी है, बच्चे तुम तो खुद ही सुख स्वरूप हो, खुद ही शांत स्वरूप हो, तो फिर और कुछ कहीं सोचने की मांगने की हमको जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे चिंतन में रहने से आपकी उमंग उत्साह की नेचुरल नेचर हो जाएगी, हमेशा आपको अपने अंदर एक उत्साह, एक खुशी का एहसास रहेगा, जैसे मैं उड़ती हुई हूं, बस मेरे पांव धरती पर नहीं है। हाँ, जब बहुत खुशी होती है तो हमने देखा है माताएं घर में, मान लिया जाए कोई प्रोग्राम है, कोई खुशी है, हैं कुछ आया है, वैसे टांग में दर्द होगा, हाँ कैसे चलेगी, चलनी, और उस दिन भागती रहेगी सारा दिन, हाँ क्यों, क्योंकि खुशी है, वो दर्द भी महसूस नहीं होता। तो हमको फिर कोई भी बात प्रभावित नहीं कर सकती, भले आती है चिंता वाली बातें, पर वो आपके ऊपर असर ही नहीं करेंगी, आपको बहुत मामूली लगेंगी वो। और हमें अपना डबल लाइट रूप भी याद रहेगा, हल्केपन बस, तो उसमें हम सदा उड़ रहे हैं, सदा खुश हैं, और सारी बातें जब हम ऊंची स्थिति पे आ गए उड़ने की, तो वो बात हमारे आगे पहाड़ भी क्या बन जाएगा, बाबा कहते ना राई बन जाए, राई भी नहीं रुई बन जाए। हाँ कोई भी बात कितनी भी कैसी आए, उदास करने वाली हो, निराश करने वाली हो, चिंता वाली हो, आपके ऊपर उसका असर नहीं हो सकता। तो ऐसा हमारा सदा उमंग उत्साह, जैसे अभी इस भट्टी में आप अनुभव कर रहे हो, देखो दौड़ दौड़ कर बारिश होते भी सभा में पहुंच जाते हो ना, ऐसे ही वो हमेशा बना रहे, चाहे आप घर में जाएंगे, फिर सेंटर पर जाना है, तो उतना ही ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सदा खुशी से, सदा उमंग से, ऐसे नहीं क्या करूं बहन जी, अब तो मैं फंस गया बहन जी, क्यों फंस गए, कहां फंस गए, नहीं फंसे, अपने स्वरूप में आओ, अपने ओरिजिनल क्वालिटीज में आओ, उसमें रमण करो, बस सब सहज ही सहज है। तो ऐसी छाप अभी इस अनुभव को लेके जाना अमिट बन जाए, तो हमेशा ये ब्राह्मण जीवन जब तक सांस है, हाँ तब तक उत्साह है, हाँ तब तक उमंग है, और तब तक उड़ते रहेंगे, है ना। और ये कमाई का जीवन है तो वैसे ही खुशियां ही खुशियां है, जब इतना भाग्य बन रहा है, बाबा हमें 21 जन्मों का वर्षा अभी ही फिक्स कर देता है, तो हमें कितना नशा रहना चाहिए। तो आप सब ऐसी आत्माएं, हमारी शुभ भावना शुभकामना है, बाबा की लगन में हो, तीव्र पुरुषार्थी होकर सदा उमंग और उत्साह में रहो। ओम शांति।